نمبر ایک کنگ چونک، نمبر دو دھوئے کا حصار، نمبر تین سمندر کا شگاف، نمبر چار زلزلے کا سفر، اور نمبر پانچ بلیک اینڈ وائٹ۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جسے علی عدنان ریکارڈ کر رہے ہیں، جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں، اور جسے جناب ابن صفی بی اے نے تحریر کیا ہے۔ کیسٹ نمبر ایک یہاں سے سماعت فرمائیے۔ ظفر ملک نے مینڈورن پر ایک دھن چھیڑ رکھی تھی اور جیمسن پورے کمرے میں تھڑکتا پھر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور پورے جسم پر لرزہ سا طاری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی مشینی عمل کے تحت جسم کا ایک ایک ریشہ تھڑک رہا ہو۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے باہر سے کال بیل کا بٹن دبا دیا اور گھنٹی کی تیز آواز کے ساتھ ہی ظفر کا ہاتھ بھی رک گیا۔ جیمسن جس پوزیشن میں تھا اسی میں رہ گیا۔ جاؤ دیکھو کون ہے، ظفر نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کوئی بدذوق ہی ہوگا جس نے اس وقت میری مسرتوں کو سانس بند کر ڈسنے کی کوشش کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملہ بولا کرو، جاؤ بھاگ جاؤ۔ جیمسن چانے لٹکائے شرابیوں کی طرح جھومتا ہوا صدر دروازے کی طرف چل پڑا، لیکن دروازہ کھولتے ہی دیوتا کوچ کر گئے۔ سامنے عمران کھڑا اسے غصینی نظروں سے گورے جا رہا تھا۔ تشریف لائیے یور میجسٹی، وہ کئی قدم پیچھے ہٹ کر بولا۔ عمران خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ ظفر الملک بھی عمران کو ایسے موڈ میں دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، عمران پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، تمہارے اس بدمانس نے میری زندگی تلخ کر کے رکھ دی ہے۔ میں نے، جیمسن کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں تم نے، کیا میں کروڑ پتی ہوں؟ میں نہیں سمجھا یور میجسٹی، کل میں نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تاہیتی میں کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ اس پر تم جوزف کو تاہیتی کی تاریخ اور جغرافیہ کی پڑھانے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے اس جزیرے کا محل وقوع پوچھا تھا، کہ میں نے اسے کوئی غلط بات بتا دی تھی یور میجسٹی؟ تاہیتی کے آخری بادشاہ پومار پنجم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران گرج کر بولا۔ تو اس سے کیا ہوا یور میجسٹی؟ تذکرہ کیا ہی تھا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ شراب پیتے پیتے مر گیا تھا، اور اس کے مقبرے کی بالائی منزل شراب کی بوتلوں کی شکل میں تراشی گئی ہے۔ آپ بیٹھ تو جائیے جناب، ظفر بول پڑا۔ ہرگز نہیں، عمران سر ہلا کر بولا، بیٹھنے سے میرا غصہ دھیما پڑ جائے گا۔ آخر اس غصے کی وجہ کیا ہے یور میجسٹی؟ جیمسن نے کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ دانت بند کر، وہ شب تاریخ کا بچہ کل سے بیٹھا رو رہا ہے، رات کی نیندیں حرام کر دی۔ کبھی کبھی چپکے چپکے روتا ہے اور کبھی دھاڑے مارنے لگتا ہے۔ آخر کیوں؟ ظفر اور جیمسن نے یک بیک سوال کیا۔ کہتا ہے کومار پنجم خوش نصیب تھا کہ پیتے پیتے مر گیا، مجھے اس کے مقبرے کی زیارت کرا دو باس۔ دونوں ہنس پڑے اور عمران چیخ کر بولا، بس بس کرو ورنہ ایک ایک کا خون پی جاؤں گا۔ دونوں یک لفظ سنجیدہ ہو کر عمران کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بات، عمران نے بھوسا دکھا کر بولا۔ وہ اپنی پچھلی خدمات کا واسطہ دیتا ہے کہ اور کہتا ہے، میری یہ خواہش ضرور پوری کر دو باس، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے، ظفر نے پرتفکر لہجے میں کہا، اور جیمسن پھر ہنس پڑا۔ میں کہتا ہوں دانت بند کرو، میرے پاس قارون کا خزانہ نہیں ہے کہ اسے پورے کومارے کے مقبرے کی زیارت کرانے کے لیے تاہیتی کا سفر کروں گا، تنہا وہ جانا نہیں چاہتا۔ مجھے بھجوا دیجیے اس کے ساتھ، تاہیتی جنت ہے یور میجسٹی، یوں کفر بکتا ہے، جہاں لوگ دن رات نشے میں رہتے ہوں وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے مذہبی نقطۂ نظر سے نہیں کہا تھا، میں مہاورتن بھی ایسی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تاہیتی کا ذکر آپ ہی نے چھیڑا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہاں عام طور پر کون سی زبان بولی جاتی ہے، تم دونوں وہاں جا چکے ہو نا، اور تمہارا جواب سن لینے کے بعد मैं तो वहाँ ठहरा भी नहीं था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम जोसेफ को वहाँ के हालात बताने बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे सर पर सवार रहता। आप सीरियस क्यों हो जाते हैं? जोसेफ को डांट डपट कर खामोश करा दीजिए। मैं किसी के मजहबी जज्बात को ठेस लगाना नहीं पसंद करता। इसका मजहब से क्या ताल्लुक? बोतली उसका मजहब है। इस मसले पर मुझसे बहस ना करो। अच्छा तुझे जियारत करा लाइए। कितना है तुम दोनों का बैंक बैलेंस?
हमारे बैंक बैलेंस से आपको क्या सरोकार?
अच्छा तो क्या तुम ये समझते हो कि तुम दोनों को यहाँ ऐड करने के लिए छोड़ जाऊंगा?
हुर्रा! जेम्सन ने उछलकर नारा लगाया और दफर की तरफ देखते हुए दांत निकाल दिए।
हम दोनों तो बिल्कुल थप्पड़ हैं, जफर ने मुस्मुसी सी सूरत बनाकर कहा। कुछ भी हो, अगर जोसेफ होश में ना आया तो तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा।
देखो आपके यार हाइनेस,
जेम्सन ने जफर को मुखातिब किया। ऐसे होते कदरदान आका, जबान बंद कर, जफर भन्ना कर बोला। जोसेफ जैसे नाकारा आदमी की जिद पूरी करने के लिए इतना लंबा सफर करेंगे?
तुम जोसेफ को नाकारा कह रहे हो?
इमरान जेम्सन को घूर कर बोला। अपने अल्फाज वापस लेता हूँ यार मैजेस्टी, आपके सीने में सचमुच किसी बादशाह का दिल है। मुनासिब ये होगा कि तुम दोनों चलकर उसे समझाओ, वरना ये बादशाह एक दिन में भिखारी हो जाएगा।
और मैंने कहाँ से लाऊंगा इतना सरमाया?
अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, जेम्सन चहक कर बोला। वो सखावत पसंदों की मदद करता है। मेरे साथ चलो उसे समझाओ वरना खाल खींच लूंगा, इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। जेम्सन ने गर्दन डाल दी। मगर अब क्या समझाएंगे योर मेजेस्टी, तीर कमान से निकल चुका है, इसने मुर्दा की आवाज में कहा। कह देना वो मारे पंजुम का सिरे से कोई वजूद नहीं था। मैं किसी तारीखी हकीकत को नहीं जुटला सकता।
अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे जोग्राफिया बिगाड़ कर रख दूंगा,
इमरान सर्द लहजे में बोला। जफर कैंची लाओ।
नहीं, जेम्सन अपनी गुंजान दाढ़ी और हथियों जैसे बाल सहलाता हुआ पीछे हटने लगा।
बस तो फिर चलो।
सलमान के समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इमरान जोसेफ को रोता धोता छोड़कर बाहर चला गया था और उसकी शामत आ गई थी। जोसेफ थोड़ी देर बाद सलमान भाई की हाँक लगाता और इसे काम छोड़कर उसकी तरफ दौड़ना पड़ता।
क्या भाई के सगे, मुझे हांडी भूनने दोगे या नहीं?
भाई सलमान भाई, हम बहुत अनफॉर्चुनेट है,
जोसेफ गुले गैर आवाज में बोला।
हो गए,
सलमान ने बेजारी से कहा। अब ये रोना धोना खत्म करो।
नहीं हो सकता, हम जाएगा ताहिती।
अबे तो क्या मैंने तुझे पट्टी जाने से रोका है?
सलमान ने हैरत से कहा।
पट्टी नहीं, ताहिती।
ये क्या होता है?
एक आइलैंड है, जजीरा।
होगा, अभी मुझे शामी कबाबों का कीमा भी पीसना है।
हाय पमारत दी ग्रेट, जोसेफ फिर झाड़े मार मार कर रोने लगा।
अबे ये शराब में अफीम भी मिलाने लगा है।
हाय सलमान भाई,
मर गया सलमान भाई, जन्म में जाओ, कहता हुआ सलमान किचन की तरफ चला गया।
जोसेफ ने बोतल उठाकर होठों में जमाई, घट घट तीन चार घूंट लिए और पहले से भी ज्यादा दिल जमी से रोने लगा। इस बार सलमान पलटा तो उसके हाथ में बड़ा सा आईना भी था, जिसे जोसेफ के चेहरे के करीब करता हुआ बोला, जरा देख अपनी शक्ल, रोता हुआ कैसा लग रहा है। दफ़ादन जोसेफ इस तरह खामोश हो गया जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी में फौरी तौर पर पूरे ब्रेक लगते हों। इसे ऐसा मालूम होता था वो ऐसे सत्ता हो गया हूँ।
क्या बात हुई? सलमान खुश्क लहजे में बोला।
रोता रहता तो छप भी दिखाई देती। यकर जोसेफ ने हजियानी अंदाज में कहकहा लगाया और सलमान को गोद में उठाकर नाचने लगा।
अभी ये क्या, ये किसकी नहीं होती, फिर ये।
लेकिन जोसेफ तरक और कहकहे जारी रहे। सलमान की गिरफ्त से निकलने के लिए किसी नन्हे बच्चे की तरह हाथ पाँव मारता रहा। ठीक इसी वक्त इमरान, जफर और जेम्सन फ्लैट में दाखिल हुए और सलमान उन्हें देखकर चीखने लगा,
सारा पागल हो गया, अरे बचाओ बचाओ,
ये क्या हो रहा है? इमरान धाड़ा। जोसेफ ने बौखलाकर अपने हाथ फैला दिए और सलमान धम से फर्श पर आ गिरा। इसके बावजूद भी खुशी के मारे जोसेफ के दांत निकले पड़ रहे थे।
बल आखिर वो चहकती हुई आवाज में बोला, मुराद पूरी हो गई बॉस, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। इमरान ने सलमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, जो दोनों हाथों से कमर दबाए फर्श पर उकड़ू बैठा कराहे जा रहा था। मैंने इसे अपनी खुशी में शरीक किया था बॉस, किसी दिन मसूर की दाल की आप जोश में जहर दे दूंगा साढ़े को, सलमान फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। तू भी बता क्या बात है, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। बस रोते रोते हंसने लगा, पागल खाने भिजवा दीजिए इसे वरना मैं चला, खुद ही चूल्हा हांडी कर लीजिएगा। ये बात नहीं बॉस, खुदा इस पर अपनी रहमतें नाजिल करे, जोसेफ बोला। मैं रो रहा था, इसने मुझे आईना दिखा दिया। ओह, इमरान ने फर्श पर पड़े हुए आईने को देखकर दीदे न चाहे। हाँ बॉस, तू अपनी रोती हुई शक्ल देखकर तेरा दिल बाग बाग हो गया। ये बात नहीं बॉस, चम्बाटा का कॉल है कि अगर नामुरादी में ख्वाब में भी आईना दिखा दिया जाए तो मुराद पूरी हो जाती है। सलमान भाई ने तो मुझे जागते में आईना दिखाया। इमरान सर हिलाकर बोला, ये चम्बाटा कौन बुजुर्गवार है। सैकड़ों साल पहले मेरे कबीले का बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन तेरी मुराद पूरी नहीं हो सकती। क्यों बॉस? कोमारे के मकबरे पर फ्रांस ने एटम बम फेंक दिया। देखिए मेजेस्टी, इस बेचारे का दिल न दुखाइए, जैनसन बोल पड़ा। क्या सोचिए, जो सब भुर्राई हुई आवाज में बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हज मैजिस्ट्रेटी मजाक कर रहे हैं। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान जैनसन को भूखा दिखाकर बोला। मैं कैसे इसे समझाओ? अच्छा अच्छा, देखो प्यारे जोसेफ, इस सफर पर हजारों डॉलर खर्च होंगे, जैनसन ने कहा। क्या परवाह, मेरा मालिक बादशाह है। देखा आपने योर मैजेस्टी, हकीकत हर हाल में हकीकत रहती है। हकीकत के बच्चों, मैं कहीं डूब मरूंगा। ताहिती बॉस ताहिती, मुझे यकीन है मेरी मुराद पूरी होगी। मैंने आईना देखा है, गले में लटका ले आईने को और सर पर दौड़ता चला जाए ताहिती की तरफ। मैं खुदकुशी कर लूंगा बॉस, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी न की। सुना तुमने, इमरान जफर और जैनसन की तरफ देखकर बोला। तुम कोमारे के मकबरे की जियारत करके क्या करोगे, जैनसन बोला। वो तो फ्रांसीसियों की गुलामी में मरा था। नहीं मिस्टर, वो सिर्फ बोतल का गुलाम था, मैं भी हूँ, जोसेफ ने कहा। अच्छा तो ए बोतल का गुलाम, अब बोतल ही तुझे ताहिती पहुँचाएगी, इमरान ने आंखें निकाल कर कहा। बोतल भी तुम्हारे ही दम से है बॉस, इसलिए तुम्हारा ही गुलाम हूँ, रहम करो मुझ पर, जोसेफ ने कहा और यकबैक फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। क्या किया जा सकता है, इमरान मायूसाना अंदाज में बोला। किसी न किसी तरह भुगतना ही पड़ेगा। जिंदाबाद, जैनसन ने नारा लगाया। हज मैजिस्ट्री इमरान दी ग्रेट, जिंदाबाद। जोसेफ की भू भू में भी ब्रेक लग गया और वह हैरत से जैनसन की तरफ देखने लगा। जाओगे जाओगे जरूर जाओगे, जिसका आके इतना दरिया दिल हो उसे क्या गम हो सकता है, जैनसन ने कहा। और इमरान बुरा सा मुंह बनाकर खुश लहजे में बोला, मक्खन नहीं चलेगा, चंगेजी हूँ, नवाब वाजिद अली शाह की नस्ल से नहीं हूँ। और फिर वह दूसरे कमरे में चला गया था और जोसेफ ने फिर हंस हंस कर बातें शुरू कर दी थी। ताहिती में सुनहरी रंगत वाली लड़की पाई जाती हैं, जैनसन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। वो खुशबू और सरमस्ती की जमीन है। देखो मुझे मिस्टर, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, जोसेफ गले गहरे आवाज में बोला। तुम मुझे ये बताओ कि सफेद फार्म सुअरों ने इस जजीरे के बासियों पर क्या मजालिम ढाए थे, मुझे बताओ, मैं रोना चाहता हूँ। फ्रांसीसियों ने इन्हें हर एतबार से नाकारा बना दिया, उन पर इतने मजालिम हुए कि इन्होंने रंजी और सरमस्ती की गोद में पनाह ले ली। क्यों बकवास कर रहे हो, जफर बोला। वो इब्तदाई से गाने बजाने वाले लोग थे, फ्रांसीसी तहजीब ने सोने पर सुहागे का काम किया। कुछ भी हो, जैनसन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, पॉलिनीशी चीनी और फ्रांसीसी नस्लों के मेल जोल ने बड़ी सुनहरी लड़कियां पैदा की हैं। ये जुल्म है, ये जुल्म है, जोसेफ भुर्राई हुई आवाज में बोला। क्या जुल्म है, इन बेचारी लड़कियों के बारे में तुम्हारे इजहार ख्याल का अंदाज। मुझे सारी दुनिया में सिर्फ ताहिती की औरतें पसंद है, जिन्हें खुशबुओं, गीतों और सरमस्ती से प्यार है। तुम क्या जानो सरमस्ती क्या चीज है मिस्टर, तुम तो पीते ही नहीं। ये भी तुम्हारे आका का करम है, वरना पहले हम भी पीते थे। इन हजरात की नफ्सियात आज तक मेरी समझ में नहीं आ सकती, हमें एक आधा पैक की भी इजाजत नहीं और तुम्हारे लिए छह बोतलें योगियां। तुम शराब के बगैर भी जिंदा रह सकते हो लेकिन मैं मर जाऊंगा। मेरा आका अकल का देवता है। बस ये समझ लो कि छोटे शंभू ने आदमी के रूप में जन्म ले लिया है। क्या कहा तूने? दूसरे कमरे से इमरान की आवाज आई। मुझ पर रहम कर, मेरा कार्टून ना बना। तुम छोटे शंभू हो बॉस, इस पर मेरा ईमान है। भूसा मारकर सारे दांत पेट में उतार दूंगा अगर अब ये नाम लिया। इसने कमरे से बरामद होते हुए कहा, क्या मेरी शक्ल ऐसी है? इसको हुआ क्या है? दफतन सलमान पूछ बैठा। इसको पोमारो पंजुम हो गया है। ये क्या होता है? ये पूछ कर नहीं होता है। हाँ, ये भूख कैसी है? अबे जल्दी अंडे खाओ जल्दी से। सलमान तो किचन की तरफ भागा और इमरान ने जोसेफ का गरेबान पकड़कर झटका देते हुए कहा, इतना सरमाया नहीं है मेरे पास कि मैं भी जा सकूं। ये दोनों तुझे जियारत कर लाएंगे। तुम्हारे बगैर तो मैं जन्नत में भी कदम न रखूंगा बॉस। देख मुझे परेशान न कर, वरना सच में शादी कर दूंगा, फिर तुम सब जूतियां खाकर यहाँ से निकलोगे। जैनसन मुस्तफराना अंदाज में जफर की तरफ देखे जा रहा था। उसने इस तरह सर को जंबिश दी जैसा खुद में मामले की तह तक पहुँचने से कासिर हो। जोसेफ ने इमरान के पैर पकड़ रखे थे और उसके सर पर 72 चला रहा था। फिर किसी वक्त किसी ने बाहर से कॉल बेल का बटन दबा दिया। देखो, इमरान ने दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर कहा, देखो। जैनसन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और फिर बौखलाकर पीछे हटाया। एक लहीम शहीम सियाफाम औरत सामने खड़ी उसे घूरे जा रही थी और ये जोसफी की नस्ल से मालूम होती थी। लिबास उमदा था, गले में सच्चे मोतियों का बेश कीमत हार इसके रंग को कुछ और ज्यादा उभार देने का सबब बना हुआ था। और गिरहाइने इमरान बौखलाए हुए अंदाज में आगे बढ़ा और एहतरामन झुकता चला गया और फिर सीधा होकर बुलंद आवाज में बोला, जेंटलमैन, प्रिंसेस काला बुआ ऑफ बंकाटा, पे योर रिस्पेक्ट प्लीज। इस पर जफर और जैनसन ने भी इमरानी के से अंदाज में झुककर उसकी ताजीम भी की। वो कमरे में दाखिल हुई और अब उन्होंने देखा कि इसके पीछे एक सफेद फार्म बॉडी गार्ड भी था। जोसेफ का मुंह हैरत से खुला हुआ था, जहाँ था वहीं रह गया था। न उठा था और न दूसरों की तरह इसने औरत को ताजीम दी थी। औरत जोसेफ को घूरे जा रही थी। फिर इमरान ने इसकी तरफ देखा और उसने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर सर को अस्बाती जंबिश दी। दफतन इमरान जोसेफ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और घिघियाने लगा, हुजूर आलम, मुझे नहीं मालूम था आप बंकाटा के शहजादे हैं। क्या बंकाटा से भैंस के दूध पर इख्तलाफ राय हो जाने की बिना पर आपने रियासत को खैरबाद कह दिया है? तुम तो क्या कह रहे हो बॉस? जोसेफ हकलाया, बस हजूर, नादानस्तगी में मैं बहुत गुस्ताखियां कर चुका हूँ, अब मुझे अपनी खिदमत का मौका दीजिए। क्या मैं पागल हो जाऊं? नहीं, मेरे साथ चलो डार्लिंग, सियाह फाम औरत बोली, अब मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैनसन और जफर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। सलमान भी बाहर के खाने से दौड़ा आया था लेकिन गुफ्तगू अंग्रेजी में होने की बिना पर इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। ये क्या चक्कर है बॉस? मैं सूरत को नहीं जानता, जोसेफ बेबसी से बोला और एक एक की सूरत देखने लगा। चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे बुरी तरह झींप रहा हो। तुम और भोकसेले लहजे में बोली, अपनी बीवी को नहीं पहचानते? जोसेफ हलक फाड़ कर धारता हुआ बोला, मेरे साथ किसी किस्म का फ्रॉड किया जा रहा है। अगर तुम भी धोखे में आ गए बॉस तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा। नहीं हजूर, मैं अब आपका बॉस नहीं रहा, मुझे वजीद शर्मिंदा ना फरमाइए। बॉस, तुम्हें क्या हो गया है? इमरान उसे कोई जवाब दिए बगैर औरत की तरफ मुड़कर बोला, आप प्रिंस को ले जा सकती हैं योर हाइनेस। मुझे कहाँ भेज रहे हो बॉस? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जोसेफ गुस्सेले लहजे में बोला। अभी मरा क्यों जा रहा है? इमरान उर्दू में बोला, अगर ये औरत झूठी है तो मैं इसे देख लूंगा। तुम यकीन कैसे किया बॉस? वफात मत कर, चुपचाप उठो और जहाँ ये ले जाए चले जाओ। लेकिन ये तो बीवी बोलती, मेरा हुक्म मानो वरना इसे बेवा कर दूंगा। जोसेफ के चेहरे पर मुर्दनी खा गई। देखते ही देखते जोसेफ वहां से रुखसत हो गया। जैनसन ने खिड़की से सड़क पर झांक कर देखा, नीचे लंबी सियाह गाड़ी खड़ी थी और बॉडीगार्ड इन दोनों के लिए पिछली निशस्त का दरवाजा खोल रहा था। तुम दोनों इनका ताकुब करोगे, इमरान ने जफर से कहा। किससे क्या है? सिंदबाद का, जाओ मुझे बाखबर रखना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ माने खैर नजरों से देखा और स्लेट से निकल गए। सिंदबाद को क्या पूछता था जनाब? सलमान ने आगे बढ़कर पूछा। अच्छा तो अब आप भी बोर करेंगे। वो कौन थी? जोजफ की किसी शक्ल थी उसकी। शहजादा जोजफ, इमरान ने आंखें निकालकर तस्दीक की। क्या मतलब? जोजफ यकीनन बंकाटा का शहजादा है और वो उसकी बीवी थी। नहीं, सलमान उछल पड़ा। अबे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दूर साहब खुदा न करे, दरअसल मैं ही बदनसीब हूँ कि जिंदगी भर चूल्हा हांडी ही करता रह जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तू कहे तो तुझे शहंशाह हैज सलासी का फर्जंदे अकबर भी करार दे सकता हूँ। जी नहीं, मुझे अपने बाजी का बेटा रहने दीजिए। चूल्हा हांडी ठीक है, शाबाश। अनारदाने की चटनी भी बना लीजिए, मसूर की दाल चटनी के बगैर नहीं चलती। तो क्या वो अब वापस नहीं आएगा? सलमान ने मायूसी से पूछा। खुदा जाने, दिल खोल रहा है उसके लिए। चल चल, हर वक्त झगड़ता रहता है इससे। उससे क्या होता है साहब, मोहब्बत अपनी जगह पर है। कभी कभी कहता था, तुम हमको नहीं जानता सलमान भाई, तेरे लिए जान भी दे सकता। देख फिर कुछ जल जाएगी तन में, इमरान हाथ उठाकर बोला। बात समझ में नहीं आई, जफर ने जैनसन से कहा। ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये सब कुछ जोसेफ की लाइलमी में हुआ है, जैनसन बोला। बात ताहिती की चल रही थी और फिर वो शहजादी साहब टपक पड़ी। ये बंकाटा है कहाँ योर हाइनस? मैं नहीं जानता। जोसेफ के चेहरे पर मैंने इस वक्त सदाकत देखी थी जब वो अपनी शहजादगी से इनकार कर रहा था। क्यों दिमाग चाट रहे हो, अपने काम से काम रखो। वो दोनों उस लंबी सी गाड़ी का ताकुब कर रहे थे जिसमें जोसेफ अपनी नौ दरियाफ्त बीवी समेत किसी नामालूम मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था। जैनसन जफर की गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जफर ने उसने कहा, एक गाड़ी हमारे भी ताकुब में है, मुझे इल्म है। जफर बोला, बस खामोशी से चलते रहो। कुछ देर बाद जोसेफ वाली गाड़ी एक गैर मुल्की सफारत खाने के कंपाउंड में दाखिल हुई। जैनसन ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और इसका ताकुब करने वाली गाड़ी आगे निकलती चली गई। इसके पीछे चलो, जफर बोला। जोसेफ की निगरानी करने को कहा गया था, जैनसन ने याद दिलाया। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे चलो। चलिए, जैनसन ने तवील सांस लेकर कहा। जरूर नहीं कि वो लड़की हो, अगर अपने कबीले का कोई आदमी निकला तो खामोशी से चले चलो। जूलियाना पीटर्स वाटर थी, अपने पीछे आने का इशारा किया था। ये औरत आज तक मेरी समझ में ना आ सकी, भला आप किस कोशिश करते हैं इसे समझने की? अक्सर इमरान साहब का ताकुब करते देखा है। अपने काम से काम रखो। काम ही कोई नहीं है, वैसे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ योर हाइनेस कि वो जूलिया नहीं थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ चलते रहो। एसजी प्लीज, सड़क पर ट्रैफिक का अजदहान नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। जफर की अगली गाड़ी रुक गई और खिड़की से एक हाथ से निकलकर पीछे आने वाली गाड़ी को रुकने का इशारा किया। जैनसन ने पूरे ब्रेक लगाए थे वरना गाड़ी अगली गाड़ी तक पहुंचते टकरा ही जाती। कार ड्राइव करने वाली जूलियाना पीटरवाटर नहीं थी, अलबत्ता किसी हद तक इससे मुशाबा जरूर थी। जैनसन दांत निकाले खड़ा उसे घूर रहा था और अपनी गाड़ी से निकलकर फ्रांसीसी जुबान में वो बोली, यहाँ कोई मेरी जबान नहीं समझ सकता, मैं रास्ता भूल गई हूँ। जैनसन ने सख्ती से होंठ खींच लिए और जफर की तरफ मुड़ा। वो भी गाड़ी से उतर ही आया था। उसने उसे गुफ्तगू जारी रखने का इशारा किया। शायद मैं तुम्हारी जबान समझ सकता हूँ, जैनसन ने फ्रांसीसी जबान में कहा। ओ खुदा शुक्र, लड़की खिल उठी। बताओ मेरे लायक क्या खिदमत है? मैं फ्रांसीसी सफीर के सकाफती अताशी के मेहमान हूँ, मुझे सफारत खाने पहुँचा दो। मुझे हैरत है मोहतरमा, आप सफारत खाना पीछे छोड़ आई हैं इसी सड़क पर। मुझे यहाँ सारी इमारतें यक्षा मालूम होती हैं। गाड़ी मोड़कर हमारे पीछे चली आओ, जैनसन ने कहा और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। लड़की ने इसके मशवरे पर अमल किया था और अब दोनों गाड़ियाँ वापसी हो रही थी। चक्कर समझ में नहीं आया, जैनसन बड़बड़ाया। परवाह मत करो, जफर ठंडी सांस लेकर बोला। बहुत दिनों के बाद एक मेयारी नमूना नजर आया है, दोस्ती हो गई तो वक्त अच्छा गुजरेगा। तुम्हें मारे न जाए, जोसेफ वहीं ले जाया गया है जहाँ ये हमें ले जा रही है। लैंग्वेज प्लीज, लड़की लाख मियारी सही, लेकिन आप अपना मियार बरकरार रखिए। अच्छा अब खामोश। खैर खैर, मैं गाड़ी बाहर ही रोकूंगा या कंपाउंड में लेता जाऊं। अंदर चलो वरना बात आगे कैसे चलेगी। दौड़ा पड़ गया आप पर ये राइनस। सफर कुछ न बोला। जैनसन सफारत खाने की कंपाउंड में गाड़ी मोड़ रहा था। दोनों गाड़ियां करीब करीब पार्क हुई और लड़की हाथ हिलाकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ यही इमारत है, तुम लोग भी उतरो, मैं तुम्हें अपने मेजबान से मिलाऊंगी। तुमने देखा, गफर आहिस्ता से बोला। इसकी होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। मैं मुनासिब नहीं समझता योर हाइनस। क्या मुनासिब नहीं समझते? यही कि हम इसके साथ इमारत में दाखिल हों। तुम जानते हो कि यहाँ मेरे कई शनासा हैं। उतरो ना, क्या सोच रहे हो? वो गाड़ी के करीब आकर बेतकल्लुफी से बोली थी। उन्होंने इमारत के एक रहायशी हिस्से में लाई। क्या पियोगे? इससे जैनसन से पूछा। ठंडा पानी। शकली से मालूम होता है, उसने जफर की तरफ देखकर पूछा। तुम बताओ। जरूरत नहीं महसूस कर रहा। तुम लोग फ्रांसीसियों कैसे लहजे में फ्रेंच बोल सकते हो? लड़की ने कहा। मेरा नाम लुइसा है, मैं जफर हूँ और ये मेरा सेक्रेटरी जैनसन। दोनों खूबसूरत हो। जैनसन के दांत निकल पड़े। ठीक उसी वक्त बाएं जानिब से आवाज आई, तुम्हारी इजाजत से। वो चौंक कर मुड़े। दरवाजे पर वही सियाह फाम औरत खड़ी नजर आई जिसे जोसेफ की बीवी होने का दावा था। ओ मदाम, लड़की बौखलाकर बोली, ये मेरे दोस्त हैं। मैं इन दोनों से वाकिफ हूँ, प्रिंसेस बंकाटा ने पुरवकार लहजे में कहा। तुमने बहुत अच्छा किया इन्हें यहाँ ले आई। यहाँ प्रिंस अजनबी में परेशान हो रहे हैं। जैनसन ने आहिस्ता से अपनी खोपड़ी सहलाई और मायने खैर नजरों से जफर की तरफ देखने लगा। मैं सफारत खाने का रास्ता भूल गई थी, यही लोग मुझे यहाँ लाए हैं, लुइसा ने कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या ये फ्रेंच बोल सकते हैं? इस बिना पर तो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, वरना मैं तो भटकती फिर रही थी। ये लोग रवानी से फ्रेंच बोल सकते हैं। क्या तुम लोग कुछ देर प्रिंस की दिल भी कर सकोगे? प्रिंसेस ने जफर की तरफ देख कर पूछा। यकीनन यकीनन, अब संभालिए, जैनसन उर्दू में बोला। आए थे परिवश के चक्कर में और अब भुगतिए मलका तारीख शकल कुछ को। बप्पो मत, तो आओ चलो मेरे साथ, शायद प्रिंस तुम्हें देखकर खुश हो जाए। वो दोनों बंकाटा की शहजादी के पीछे चल पड़े। जैनसन झिझलाहट में उसकी मटकती हुई चाल की नकल उतार रहा था। एक बड़े और आरास्ता कमरे में पहुंचकर शहजादी ताला बुआ रुक गई। तुम लोग बैठो, प्रिंस लिबास तब्दील कर रहे हैं, उसने कहा और उन्हें वहीं छोड़कर खुद चली गई। मेरा ख्याल है हम फंस गए हैं, जफर आहिस्ता से बोला। इस कलौटी से जैनसन के लहजे में तस्दीक थी। यकीन करो मामला गड़बड़ मालूम होता है। क्या मतलब? देख लेना, जफर ने तवील सांस ली। दरअसल दाहिनी जानिब वाले कमरे का पर्दा हटाकर जोसेफ इस हैरत कजाई में अंदर दाखिल हुआ कि जिसम पर सुर्ख रंग का मखमल काबंद लगे हुए कोट था और टांगों में सफेद पतलून। चेहरे पर हवाइयां हो रही थी, लेकिन उन पर नजर पड़ते ही ऐसा लगा जैसे जी ठहर गया हो। ओह मिस्टर मिस्टर, वो कहता हुआ आगे बढ़ा। जफर और जैनसन बड़े अदब से उठ गए। खुदा के लिए तुम लोग तो समझने की कोशिश करो, खुदा जाने बॉस ने मुझे कहाँ झोंक मारा है, वो मुस्मसी सूरत बनाकर बोला। सच्ची बात है, जैनसन ने उंगली उठाकर कहा। आसमान वाले की कसम, मैं जोसेफ हूँ, अली इमरान का अजना गुलाम। जिससे अली इमरान को यकीन आ गया है कि तुम वाली बंकाटा के फर्जने अर्जमंद हो। मेरा बाप अपने कबीले का सरदार जरूर था, लेकिन इसकी बसर औकात का इंहिसार सिर्फ हाथी दात की फराहमी थी। मैं नहीं जानता कि ये मनहूस बंकाटा कहाँ वाके है। अफ्रीका में तो नहीं है? जैनसन ने पूछा। मैंने नहीं सुना, मेरे लिए बिल्कुल नया नाम है। चलो गलत ही सही, जैनसन हंसकर बोला। अगर इस तरह मुफ्त की बीवी हाथ आ जाए तो मैं शहजादा ही नहीं बल्कि शहंशाह आलम बनने को तैयार हूँ। तुम समझते नहीं मिस्टर, वो कोई बदरू है, बीवी भी तो है, तुम फिक्र क्यों करते हो? नहीं मिस्टर, जोसेफ नागवारी से सर हिलाकर बोला। बीवी के साथ में जन्नत में भी जाना पसंद नहीं करूंगा। आखिर बात की आसमानी जहानत को क्या हो गया है? इन्होंने बेच चरा इस कुतिया की बच्ची का मेरी बीवी तस्लीम कर लिया। मुफ्त हाथ आए तो क्या बुरा है? ये कोई दलील ना हुई, जोसेफ बिगड़कर बोला। मुफ्त आए रस्सी से क्या तुम अपने गले में फंदा लाना पसंद करोगे? जमा ये आती है इसकी रमक भी नहीं है इसमें, जैनसन ने जफर से कहा। इसे बोर मत करो, जोसेफ बोला। तुम पर अगर कभी ऐसी बक्ता पड़ी होगी तो तुम्हें एहसास होता कि शराब नहीं मिली, जैनसन ने हंसकर जोसेफ से पूछा। शराब बहुत है लेकिन मेरे लिए पानी से ज्यादा हकीकत नहीं रखती। बात पता नहीं कौन सी पिलाते हैं कि पहले घोंट पर आंखें रोशन हो जाती हैं। कौन सी पिलाते हैं? जफर ने जैनसन से सवाल किया। देसी शीरा, वरना वो खुद ही भीख मांगते फिर रहे होते, जैनसन बोला। दफतन ताला बुआ थे कमरे में दाखिल हुई और कड़क कर बोली, तुम लोग प्रिंस को बहका रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई योर हाइनस, जफर ने बड़े अदब से कहा। ताला बुआ ने ताली बजाई और दूसरे ही लम्हे में दो मसला आदमी कमरे में दाखिल हुए।
इन दोनों को पकड़कर बंद कर दो, ताला बुआ ने उन्हें हुक्म दिया। तुम ये क्या कर रही हो कुतिया की बच्ची? जो अजब हो रहा है, जो मेरा दिल चाह रहा है, वो सर लहजे में बोली। तुम्हारी गालियों का मैं बुरा नहीं मानती क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारी मौत बन जाऊंगा वरना अपने हुक्म वापस ले लो। मुझे ये इख्तियारात हर मेजेस्टी बनकाटा से मिले हैं। दोनों की हड्डियाँ तोड़ दूंगा वरना बाहर आ जाओ। मसल्ला आदमी जफर और जैनसन को कमरे से बाहर निकालना। रिवॉल्वरों की नाली इनकी कमरों से लगी हुई थी, मगर ये बनकाटा है कहाँ? जूलिया ने सफदर से सवाल पूछा। मैं कुछ नहीं जानता, एक्सट्रू के हुक्म पर उन दोनों को तलाश करता फिर रहा हूँ। और वो काला प्रिंस इस वक्त कहाँ है? फ्रेंच एम्बेसी में। कहानी क्या है? शायद इमरान साहब के अलावा और किसी को इल्म हो। जोसेफ को चुपचाप उस औरत के हवाले कर देने के बाद जफर और जैनसन को उनके पीछे लगा दिया था। इमरान है कहाँ? अपने फ्लैट में, बेहद मगमूम है। चलो चलते हैं, जूलिया उठती हुई बोली। तुम ही जाओ, मुझसे तो उनकी शक्ल नहीं देखी जाती। इतना ही सीरियस है? सीरियस नहीं है, तब तो देखने की चीज होगी, वह हंसकर बोली। तुम जाओ ना जाओ, मैं जा रही हूँ। साइको मेंशन से निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठी थी और इमरान के फ्लैट की तरफ रवाना हो गई थी। वो घर पर ही मौजूद था। सफदर के बयान की तस्दीक हो गई। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बहुत ही अजीज शख्सियत की तदफीन के बाद गोशा गिर हो गया हो। जूलियाना पिटल्स वाटर अपना खलंडरा मूड बरकरार न रख सकी। गैर राजी तौर पर इसका रवैया भी ताजियत ही का सा होकर रह गया। मुझे अफसोस से वो भुर्राई हुई आवाज में बोली, बहुत अच्छा हुआ तुम चली आई। वो तो किस्मत का सिकंदर था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, इमरान सपाट लहजे में बोला। मैं नहीं समझी, अब क्या बताऊं? मुझे सलमान की तरफ से तशवीश हो गई है। क्यों क्यों? अगर वो भी नवाब ज्यादा निकला तो फिर क्या मैं चने मुरमुरे फांसता फिरूंगा? आखिर किस्सा क्या है? प्रिंसेस ताला बुआ सारी दुनिया में अपने शोहर को तलाश करती फिर रही थी। यहाँ पहुंचकर उसने फ्रेंच एम्बेसी वालों को अपने शोहर की तस्वीर दिखाई। उन नाहंजारों ने के जोसेफ को पहले देख चुके थे उसका मेरा पता बता दिया, लेकिन मैंने सुना है कि जोसेफ ने इसका एतराफ नहीं किया कि वो शहजादा है। मैं कब किसी को बताता हूँ कि मैं मिस्टर रहमान का फर्जंद रशीद हूँ? हल्की सी मुस्कुराहट जूलिया के होंठों पर नमूदार हुई और इमरान कहता रहा, शाह बनकाटा यानी इसके बाप से भैंस के दूध पर इसका तनाजा हो गया था, लिहाजा बनकाटा से निकल खड़ा हुआ। भैंस के दूध पर तनाजा? जूलिया ने हैरत से कहा। हाँ, जोसेफ का ख्याल था भैंस का दूध नापाक है और शाह बनकाटा का इरशाद था कि नहीं, इसका सिर रिया होता है। ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जोसेफ घर बार छोड़ दिया। सच्ची बात, वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली। मेरी बात पर किसी को भी यकीन नहीं आता, इमरान ने बुरा मान कर कहा। अच्छा ये बताइए, बनकाटा है कहाँ? दहर के बेशुमार जजायर में से एक, फ्रांस का मकबूजा, लेकिन वहाँ रस्मी तौर पर एक पियाफाम खानदान की बादशाहत कायम है और जोसेफ किसी खानदान का चश्म चरा है। मौजूदा बादशाह के बाद इसकी ताजपोशी होगी। खुद हुकूमत फ्रांस उससे मुतालिक तशवीश में मुबतला था, तो फिर जोसेफ इसका एतराफ क्यों नहीं करता? बेहद चालाक है, इमरान दाएं हाथ दबाकर शरारत आमेज लहजे में बोला। अच्छी तरह जानता है कि एतराफ कर लेने के बाद उसे भैंस का दूध पीना पड़ेगा। जरूरी तो नहीं है, ये तुम इसलिए कह रही हो कि बनकाटा के शाही खानदान की रवायात का तुम्हें इल्म नहीं, वही भैंस की परवरिश शाही भैंस के दूध पर होती है। बेचारा जोजफ पैदाइश से जवानी तक इसी बदजोगी में मुबतला रहने की बिना पर इस कदर बिना नोश हो गया है कि पानी की जगह भी शराब ही पीता है। दिमाग में तो उतार दिए तुमने ये बात, लेकिन तस्लीम नहीं करता। भला तुम्हारे दिल का जोजफ से क्या ताल्लुक? इमरान बिगड़ कर बोला, फजूल बात मत करो। सुनो रस मलाई, अगर तुम्हारे चूहे तूने जितना की होती तो मैं इस शहजादे को भैंस को तुझे हराम ही रहने देता। एक्सू क्या मतलब? उसने सबसे पहले मुझे इतना दी थी कि जोजफ बंकाटा का वली अहद है, लिहाजा उसने इसकी बीवी टाला बुआ के हवाले कर दिया जाए। मुझे हैरत है। अरे तो तुम एक्सू की नियत से बेहतर हो, तुम्हें इस पर हैरत है? यहाँ से जाओ और मुझे शौक मनाने दो। जेमसन और जफर को तुमने इनके ताकुब में रवाना किया था? ये कब की खबर है? इमरान चौंक कर बोला, क्या तुम नहीं जानते? इमरान ने पुरता फुक्कर अंदाज में सबको मनफी जुम्बिश दी। वो उसकी आंखों में देखे जा रही थी जा रहा था। एक्सू की हिदायत पर सफदर इन्हें तलाश करता फिर रहा है। सवाल तो ये है कि वो दोनों इमरान कुछ कहते कहते रुक गया। हो सकता है तुम्हें इल्म ना हो, एक्सू ने इन दोनों को उनके पीछे लगाया हो। मेरी अकल ही खत्म हो गई है, इमरान अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। आदमी बनो, क्या मतलब? सब पर हाथ डालो। अच्छा डाल दिया, आगे चलो। मैंने 2 माह की रुख्सत के लिए दरख्वास्त दी है, चलो कहीं बाहर चले। मैं कि चलो, मुझे यहाँ क्या तकलीफ है? इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। तुम? वो कुछ कहते कहते रुक गई। जाओ, इमरान हाथ हिलाकर बोला, मेरे रोने का वक्त करीब आ रहा है। शायद तुम कभी आदमी ना बन सको, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। इस वक्त मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ, मगर अब ना कहूंगी। काम का मामला है तो जरूर बताओ, रोना आधे घंटे के लिए मुलतवी। रुख्सत की मंजूरी तुम्हारी सिफारिश पर मुनासिर है, शायद इसने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। हाँ, मेरा जोजुब, इसके लिए मैं पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दूंगा, लेकिन ये एक्सट्रू का बच्चा, इससे तो मैं आज बात भी नहीं कर सकता। जग मारते हो तुम, मैं चाहती तो ऐसा कभी ना होता। अच्छा अच्छा, छुट्टी लेकर जाओगी कहाँ? दमकाटा। वो उसकी आंखों में देखते ही मुस्कुराई कि दमाग खराब हुआ है, यकीन करो अगर छुट्टी मिल गई तो बनकाटा ही जाऊंगी। इन्हें झंझोर झंझोर कर जगाया गया। वो गाड़ी की पिछली निश्चित पर थे और इनके दरमियान वही लड़की लुइसा बैठी हुई थी जिसके चक्कर में पड़कर वो फ्रांस के सफारत खाने पहुंचे थे। तुम पर आकर नींद के दौरे के पड़ते हैं, वो अठिलाकर बोली। जेमसन ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन होठ हिलाते हुए भी काहली महसूस करके रह गया। जहन चल होकर रह गया था, आंखें सब कुछ देख रही थी, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे रद्द अमल की सलाहियत ही मफकूद होकर रह गई हो। फिजा रोशनी से नहाई हुई थी, इन्हें गाड़ी से उतारा गया। जेमसन को याद नहीं आ रहा था कि वो कब और कैसे गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी से उतरकर आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि एयरपोर्ट पर है। लुइसा उनके हाथ पकड़े हुए दरमियान में चल रही थी। जेमसन ने एक बार फिर अपने जहन को टटोलने की कोशिश की, आखिर वो इतने बेबसी से इसके साथ क्यों चल रहे हैं? इस तरह वो रनवे पर पहुंचे, लुइसा उनसे टटोल कर दी जा रही थी, लेकिन उनकी जबानें गम थी, जहन में ना झिझलाहट थी और ना एहतजाज करने की सकत बाकी रही थी। जहाज की सीटों पर भी आ बैठे, लेकिन ये तक ना पूछ सके कि जाना कहाँ है। एयरलाइन का जेट पेपर जेम्बो जेट तैयारा था। लुइसा अब भी उनके दरमियान बैठी थी। तैयारी के टेक ऑफ करते ही उन पर फिर वनूदगी सारी होने लगी, और जब वो बेखबर हो गए तो लुइसा ने उनकी हिफाजत की पट्टियां कस दी। परवाज के दौरान ही में दोबारा बेजार हुए थे और लुइसा को घूरने लगे थे। बेवकूफी की कोई हरकत न कर बैठना, लुइसा मुस्कुराई। तुम्हारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है, इतने आदमियों के दरमियान हम कोई हरकत नहीं कर सकते। जेमसन की जबान पहली बार खुली। तुम्हें मुतमैन रहना चाहिए, मैं तुम दोनों को पसंद करती हूँ। ये ज्यादती है, जफर कमजोर सी आवाज में बोला, किसी एक का इंतखाब कर लो। मेरे लिए मुश्किल है, इसकी दाढ़ी मुझे पसंद है और तुम्हारी नाक। मेरी दाढ़ी उखाड़ कर इसके चेहरे पर लगा दो, मैं किसी फ्रॉड लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? भूरे बकड़े, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, इसी ने हमने तुम्हें एम्बेसी का रास्ता बताया था और तुमने हमारे साथ ये बर्ताव किया। क्या बर्ताव किया? हमें तो इस बात का होश भी नहीं कि तुम्हारी कैद में कितने दिनों से हैं। ऐसी मकाना बातें ना करो, तुम इसे कैद कहते हो, जबकि इस दौरान मैं फैसला करने की कोशिश करती रही हूँ कि तुम में से किसे अपने लिए मुंतखब करूँ। वहाँ की आबो हवा फैसला नहीं कर सकी थी तो अब ताहिती ले जा रही हूँ। ताहिती? दोनों बैकवर्ड उछल पड़े। हाँ, तुम्हें इस पर हैरत क्यों है कि आज तक किसी फ्रांसीसी लड़की से शादी का नहीं पड़ा? दोनों कुछ न बोले, मान्य सज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लुइसा फिर बोली। प्रिंस अब बंकाटा कहाँ है? जफर पूछ बैठा। ओह प्रिंस, वो पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं? चाहिए थी दरअसल वो कोमारे पंजुम के मकबरे की जियारत करना चाहते हैं। खुदा समझे इस शख्स जिसका नाम अली इमरान है, जेमसन भर्राई आवाज में बोला। इस बार इसने उर्दू में सारे ख्याल किया था। पागल बना देने वाली हरकत है, जफर बड़बड़ाया। क्या तुम दोनों मेरे खिलाफ कुछ कह रहे हो? लुइसा बोल पड़ी। नहीं बुढ़िया, तुमने रखा ही क्या है जिसकी मुखालिफत होगी? जेमसन का लहजा झुंझलाहट से पाक नहीं था। क्या मतलब? आखिर हम कितने दिनों तक तुम्हारे साथ रहेंगे? जफर ने सवाल किया। आज 8वीं रात है। आखिर क्यों? अगर ऐसा ना किया जाता तो तुम दोनों इतनी शराफत से ताहिती का सफर ना कर सकते, तो तुम जहाज पर सवार कराना मुश्किल हो जाता। तुम लोग मजाहमत जरूर करते, अब ये भी बता दो कि हमारी हालत क्यों हुई थी। तुम्हें कई तरह की अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती रही हैं, लेकिन अब इनका असर जाहिर हो चुका है, बेफिक्र रहो। बस अब और कुछ ना पूछिए, जेमसन ने उर्दू में कहा। हम दोनों में से जिसे भी पसंद करे उसे सिर्फ ऐश करना चाहिए। मकोमत, अच्छा तो हवाई जहाज से छलांग लगा दीजिए, रफर कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद लुइसा बोली, और कुछ पूछना है? पता नहीं, जेमसन ने जल्दी से कहा। मेरे लिए यही एजाज काफी है कि तुम्हें मेरी दाढ़ी पसंद आ गई है, लेकिन मैं किससे मोहब्बत करूँ? दोनों से नया और अनोखा तजर्बा। बकवास है, एक वक्त में एक ही से मोहब्बत की जा सकती है। किताबी बातें हैं, तुम चाहो तो बैठ वक्त 10 आदमी से मोहब्बत कर सकती हो, और शायद तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं मक्खन की डली, मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। और खूब याद आया, तुम्हारे लिए प्रिंस का खत है, उसने कहा। बैग खोल कर लिफाफा निकाला। दूसरे लम्बे वो खत तक झुक पड़े थे जो उसने लिखा था। मैं तुम दोनों से शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ? बॉस ने तो मुझे धक्का दे दिया था, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता जिनसे कम अज कम बाग की खुशबू आ रही हो। मैं फिर तुम और फिर तुम्हें हैरत होगी कि मेरी इस माह की सबसे बड़ी ख्वाहिश इस तरह पूरी होने जा रही है। अब मैं उस बोतल की जियारत कर सकूंगा जो कोमारे पंजुम की मकबरे पर तराशी गई है। पहले टाहिती जाऊंगा और फिर बनपाटा। अब खुदा मेरी शहजादगी पर रहम करे, पथ पढ़कर जेमसन ने कहकहा लगाया और जफर होंठ दांतों में दबाए दूसरी तरफ देखने लगा। ताहिती के सदर मुकाम पाप एएपे की एक खुशगवार रात थी। साहिल की तरफ से आने वाली नामालूद हवाएं बस्ती में दाखिल होने से पहले ही खुशबुओं से बोझल हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे दोशीजाए फितरत ने अपने मुअत्तर गेसू खोल दिए हों। खुशबुएं भांस भांस की महकारें तरगीब और रगबत की आंख मचोली बनकर रह गई थी। रात के 2 बजे थे, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था। कैफे और रेस्तरानों में कहके थे, सागों की झनकारें थी और गीतों के फूटे फूट रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे सारी दुनिया में यहीं से मुसर्रतें तकसीम होती हों। अलबत्ता साहिल पर खूबसूरत से बंगले में जोजफ झाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी नौ दरियात बीवी टाला बुआ कभी झिझलाती थी और कभी खुशामदें करने लगती थी। कुमारे पंजुम गया जहन्नम में, अब मैं वापस जाऊंगा, जोजफ ने बार आकर अल्फाज में अपने गम और गुस्से का इजहार किया। आखिर क्यों? वो पीते पीते मर गया था और मुझे नशा ही नहीं हो रहा। सारी दुनिया में वैसी शराब नहीं मिल सकती जैसी मेरा बास मुहैया करता था। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि तुम इस हद तक शराबी हो गए होगे।
بس خاموش رہو، میں نہیں جانتا کہ تم کیا بلا ہو۔ جہنم میں جائے ولی عہدی اور بادشاہت، اور اب تو کمارے پنجم سے بھی کوئی ہمدردی نہیں رہی اگر وہ ایسی گھٹیا شرابیں پی کر مرا ہے۔ یہ بہت قیمتی ہے ڈارلنگ، عوام کیا خواہش کی بھی پہنچ سے باہر۔ چارے بوا نے میسر رکھ کے بوتل کی طرف اشارہ کر کے کہا، قیمت نشے کی ہوتی ہے بوتل کی نہیں، اور اس منحوس مقبرے پر جو بند کٹائن کی بوتل تراشی گئی ہے اس پر ہزار بار لعنت۔ میں تمہارے لیے بیکری کی روٹھڑی کی شراب کہاں سے مہیا کروں؟ وہ جھنجلا کر بولی۔ دہدن جوزف چونک پڑا اور اسے گھورتا ہوا بولا، اے بدبخت عورت، اس وقت بکری کی اوجھڑی کا ذکر کرنے کی کیا سوجی تھی کہ تو چاہتی تھی کہ میرا پتا پھڑ جائے اور میں مر جاؤں؟ نہیں، میں تو نہیں چاہتی، چلی جاؤ یہاں سے۔ تم آخر میری توہین کیوں کرتے ہو؟ جاؤ، میں تنہائی میں مرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک اسی وقت تین آدمی کمرے میں گھسا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ تو اس کی ضرورت کیسے ہوئی؟ چالا بوا نے گھرتی ہوئی بولی، اس لیے کہ ہم بنکاٹا کے شہری نہیں ہیں، ریوالور والے نے ہنس کر کہا۔ اندر مزاقہ اڑانے والا سا تھا۔ جان من کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ تم لوگوں کے ارادے کیا ہیں۔ تم کون ہو یہ معلوم کرنے والے؟ یور ہائنس، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، کھلونا نہیں۔ کیا کس کا ہے؟ جو تم بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم خاموش رہو، تالا بوا نے آہستہ سے کہا۔ ویسے جوزف کی نظر شروع ہی سے ریوالور پر تھی۔ اچانک اس نے جھاڑ کر اپنے قبیلے کا جن کی نعرہ لگایا اور کسی چیتے کی طرح ریوالور والوں پر چھلانگ لگا دی۔ پھر ریوالور کا چھل کر چھت کی طرف گیا تھا اور اس کا شکار ایک لمبی کراہ کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی جوزف پر ٹوٹ پڑے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جوزف یہ بھول گیا ہو کہ وہ آدمی ہی ہے۔ بالکل درندوں کے سا انداز میں ان پر حملے کر رہا تھا اور ہلکی ہلکی تھی گھراہٹیں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی۔ ریوالور والا تو پھر اٹھ ہی نہیں سکا تھا، ایک اور گرا، پھر ایسا معلوم ہونے لگا جسے تیسرا جان بچا کر نکل جانا چاہتا ہو۔ تالا ہوا دم بخود کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دفدن جوزف نے تیسرے کو اپنی گرفت میں لے کر سر سے اونچے اٹھایا اور فرش پر دے مارا۔ پھر تالا ہوا نے بھی کسی قسم کا نعرہ لگایا تھا اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، اے بادشاہ نگوئنڈا کے بیٹے، اے میرے شہزاد چیتے، تم جیسا تھا ویسا ہی اب بھی ہے، گھٹتے بڑھتے چاند بھی تجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ تو ہی بنکاٹا کو وہ پاؤں کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ اب یہ دیکھ کر ان میں سے کوئی اپنی ناپاک زبان ہلانے کے لیے زندہ بھی نہیں بچائے۔ میں کہ دیکھوں؟ تم خود دیکھ لو، جو تو دھننا کر بولا، مجھے اپنے ہی باپ کا بیٹا رہنے تو، میں کسی نگوئنڈا کا کو نہیں جانتا۔ وہ کچھ نہ بولے اور جھک کر ان تینوں بے ہوش آدمیوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ نسلن چینی معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی کھڑی ہو کر بولی، تینوں زندہ ہیں، لیکن آخر کیوں؟ یہ تمہاری واپسی کا راز اب کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا فضول باتیں مت کرو، میں جوزف ہوں، میں نہیں جانتا کہ نگو بنڈا کون ہے۔ میرا باپ تو پرتگالیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اب ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ تم بلی ہے ہر بنڈا ہو، والی بنکاٹا کے بیٹے، اگر میں کبھی اس کو تسلیم کر لوں تو مجھے گدھے کا بچے سمجھنا۔ چلو یہی صحیح، لیکن اب تم اس معاملے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے؟ او ہو، وہ چاہ ہوش میں آ رہا ہے، اس سے جو کچھ پوچھو اس میں دخل انداز ہونا نہ ہونا۔ جو بھی برا سا منہ بنائے ہوئے میز کی طرح بڑا اور بوتل اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ اس جھینگا مستی کے دوران میں بھی اس نے خیال رکھا تھا اس میز پر آنچ نہ آنے پائے۔ خدا کی پناہ، تالا دعا بڑھ بڑھائے، کیا تم یہ بھی نہیں جاننا چاہتے کہ یہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ میں صرف کیما کرنے کی مشین ہوں، جو تم بول رہا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ بیف ہے یا مٹن، دوسری بدل کا ہے۔ میں تمہیں اتنی زیادہ نہیں پینے دوں گی، تو پھر میں چیف چیف کا سارے دنیا کا آگاہ کر دوں گا کہ ہر منڈا نہیں جوزف ہوں۔ وہ آہستہ بولو، وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ جوزف اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حملہ آوروں میں سے ایک اٹھ بیٹھا تھا، لیکن اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، کالا وہ گرج کر بولی۔ اس نے بوکھلا کر ہاتھ ہٹا لیے اور اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگا جیسے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یور ہائنس، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم سے جو کچھ کہا گیا تھا، جس نے کہا تھا۔ جواب میں اس نے ایک بے ہوش حملہ آور کی طرف اشارہ کر کے کہا، इसके अलावा कोई उसे नहीं जानता। मैं वो क्या जानता है, मैं ये भी नहीं जानता क्या तुम किंग चाउन के आदमी नहीं हो। मॉडर्न योर हाइनेस प्लीज मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जानते तो जानने में जाओ। जोसेफ उसकी तरफ देखकर बाहर बड़बड़ाया। लुइसा उन दोनों के लिए आदाब बनकर रह गई थी। कभी जेनसन पर जान छिड़कती और कभी जफर के सर पर हाथ फेरती। ऑकलैंड से ताहिती के लिए रवाना के लिए परवाज के आवाज पर उसने उनसे कहा था, ये जरूरी नहीं कि प्रिंस से ताहिती में मुलाकात हो जाए। तो फिर तुम हमें वहां क्यों ले जा रही हो, शायद वहां की आबो हवा में किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। लुइसा ने संजीदगी से कहा। क्यों ना चाकू से तुम्हारे दो टुकड़े कर दिए जाएं, जेनसन ने भी संजीदगी से कहा। वो हंस पड़ी लेकिन जेनसन तर्क लहजे में बोला, अगर मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तो यही करूँगा। फजूल बातें में ना पढ़ो, जेनसन उर्दू में बड़बड़ाया। सवाल तो ये है इतना अहमक क्यों हो गए हैं, जेनसन समझा कर बोला। क्या मतलब, हम इसके इशारों पर क्यों नाच रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और तुझे तो मुझे जरूर मतलब करना। हमारी जेब खाली है टिकट वापसी के लिए नहीं कि किसी तरह उसे जिल देकर अपनी राह लें। तो हम कतई बेबस हो चुके हैं, यकीनन फिलहाल हमारी यही पोजीशन है। इतने में लुइसा अपनी सीट से उठने लगी। कहाँ चली, जेनसन ने पूछा। टॉयलेट, तुम दोनों गूंगों की तरह भांत भांत की आवाजें निकालते रहो। वो चली गई। जफर और जेनसन मुंह बनाए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद लुइसा वापस आ गई लेकिन इसका चेहरा दहशत से सफेद हो रहा था। क्या बात है, जफर चौंक कर बोला। खतरा, वो ऐसे से बोली, अब हम पापेटे में उतर कर प्रिंस की कयामगाह की बजाय किसी होटल में रुक करेंगे। अब हम उस वक्त तक तुम्हारे किसी मशवरे पर अमल नहीं करेंगे जब तक असल मामला का इल्म हमें ना हो जाए, जफर ने खुश लहजे में कहा। आखिर क्यों, असली बात है हम तब तक आंखें बंद करके तुम्हारे साथ चलते रहेंगे। अच्छा, प्रिंस के दुश्मन हमारा ताकुब कर रहे हैं, क्या यहाँ पर ऐसा आदमी मौजूद है? यकीनन पिछली निशिस्तों में से एक पर। कितने आदमी हैं? सिर्फ एक को पहचानती हूँ, हो सकता है इसके साथ कुछ और लोग भी हो। कोई पहचान बताओ, मैं भी टॉयलेट को जाते हुए इस पर नजर डालूंगा। पारों तक उठे हुए शानों वाला बुलडॉग शायद 42वीं निशिस्तों पर। जफर उठ गया। लुइसा के बयान की तस्दीक हो गई। भारी जबड़ों वाला और इस कदर कोटा गर्दन वाला आदमी था, कानों की लू तक आ पहुंचे थे और आंखों की बनावट अजीब पसंदी की निशानदेही कर रही थी। बजाय माहौल से बेपरवाह नजर आ रहा था लेकिन जफर की छठी हिस्स कह रही थी कि पूरी तरह बाखबर आदमी है। वो टॉयलेट की तरफ बढ़ता चला गया। यकीनन इसकी सूरत ऐसी ही थी, और से सूरत देखकर दहल जाए। वापसी पर जवाब तलब नजरों से लुइसा ने इसकी तरफ देखा था और वो सर को खफीफ सी जंबिश देकर अपनी सीट पर बैठ गया था। कहाँ का बाशिंदा है मैं इसकी कौमियत का अंदाजा नहीं कर सका, जफर कुछ देर बाद बोला। इसकी माँ पॉलीनेशी थी और बाप चीनी। सैयारा पोगा बाशिंदा है और वहाँ जहरीले मेंढक के नाम से मशहूर है, यानी डेडली फ्रॉग, जेनसन हंस पड़ा। और इसका बोलो यही कहलाता है, असल नाम सभी लोग जानते हैं, लुइसा ने खौफजदा लहजे में कहा। जरा मैं भी जियारत कर लूँ, जेनसन उठता हुआ बोला। इसका लहजा तजीब आमीर था। जफर और लुइसा गुफ्तगू करते रहे। फिर शायद 10 मिनट गुजर गए थे, जेनसन की वापसी नहीं। ओहो, कहाँ रह गया, जफरसन जफर चौंक कर बोला। हाँ, काफी देर हो गई है। ठीक उसी वक्त एक एयर होस्टेस सरासिंगी से के आलम में उनके करीब पहुंची। ये वो साहब, वो जेनसन के खाली सीट की तरफ इशारा करके बोली, टॉयलेट के करीब बेहोश पड़े हैं। नहीं, जफर मुतहराना अंदाज में सीट की तरफ उठ गया। एयर होस्टेस की दी हुई इतला दुरुस्ती वो जेनसन ही था। प्रेस पर औंधा पड़ा नजर आया। उस पर कागज का एक टुकड़ा पिन किया हुआ था जिस पर शायद बहुत जल्दी में लिखा था, मौत के जजार में फरिश्ता है अजल तुम्हें खुशामदेद कहता है। तहरीर फ्रांसीसी जबान में थी। जफर ने लुइसा की तरफ देखकर पलकें झपकाई, फिर उस पर्चे को जेनसन की पुष्ट से अलग कर लिया। कुछ लोग उनके करीब आ खड़े हुए। कुछ खास बात नहीं, जफर उठता हुआ बोला।
मेरे साथी बस कभी कभी बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, बहुत इब्तदाई तिब्बी इमदाद काफी होगी। लोग पीछे हटने लगे और जहाज का अमला जैनसन को वहाँ से उठाने की तब दर्द में महसूस हो मसरूफ हो गया। तकरीबन 20-25 मिनट बाद जैनसन को होश आ गया, उससे बराह रात सवाल न किया जाए जैसा उनकी आवाज में बोला। जैनसन के लिए एक इशारा था कि वो मोहतात रहे। वो खास वजह करीब खड़े हुए मुसाफिर ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस पर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, जबर कुछ लहजे में बोला। बराह रात सवाल आते वो परेशान हो जाएगा, कोई भी नहीं चाहता कि इसकी कमजोरी मौजू बहस बने। बात मकबूल थी इसलिए किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। सीट पर वापस आने के बाद जैनसन आहिस्ता से बोला, जब मैं टॉयलेट का दरवाजा खोल रहा था तो किसी ने बेखबरी में मेरे गर्दन पर हाथ मारा और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या। वो बस ही अपनी सीट से उठा था, मालूम नहीं हम इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थे, जफर ने जवाब दिया और जैसा पर्चा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया जिस पर किसी फरिश्ते एजेंट की तहरीर थी। क्या मतलब? जैनसन चौंक पड़ा। ये तुम्हारे पुष्प पर प्रिंट किया हुआ था। ओहो, तब तो आपने इसे छुपा कर अच्छा नहीं किया। क्यों? हो सकता है वो महज अपने शुभ की तस्दीक करना चाहता हो। नहीं योर हाइनेस, इसका ऐलान जरूरी है। अहमद ना बनो, जो कुछ आप कर रहे हैं इसकी मुआफिकत में कोई दलील भी रखते हैं। जफर कुछ न बोला। जैनसन कहता रहा, अगर उसे हमारे मुतालिक किसी किस्म का यकीन है तब भी हमारा ये रवैया मुनासिब होगा, और अगर महज शुबे में मुबतला है तो मुनासिब तरीन कह लीजिए। वालिबन तुम ठीक कह रहे हो, जफर ने पुरतफोकर लहजे में कहा। जफतन जैनसन उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, ख्वातीन और हजरात उस पर बेहोशी के दौरे जरूर पड़ते हैं, लेकिन इस वक्त में उसका शिकार नहीं हुआ था। लोग तवज्जा और दिलचस्पी से उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर क्या हुआ था? एक आवाज उभरी। मैं टॉयलेट में दाखिल हो रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर कराटे का जैसा तुला हाथ मारकर बेहोश कर दिया था। मेरे साथी को मेरी पुश्त पर एक तहरीर पिन की हुई मिली। आप भी मुलाहिजा फरमाइए। लिखा है, मौत के जजार में फरिश्ता है अजल तुम्हें खुश आमदेद कहता है। बड़ी अजीब बात है, एक खौफजदा की आवाज उभरी। जैनसन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं इसे महज मजाक भी नहीं समझ सकता, तो फिर क्या ये जहाज सचमुच मौत के जजार की तरफ जा रहा है? बकवास है। कई आवाज देख वक्त उभरी। तो फिर ख्वातीन और हजरात, अब मुझे मशवरा दीजिए कि हम क्या करें। एक खातून भी हमारे साथ है। सन्नाटा छा गया। जफर कनकियों से डेडली क्लॉक की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर तहजीर के अलावा कुछ भी नहीं था। अहमकाना अंदाज में मुंह खुल गया था और आंखें फजी हुई थी। जहाज के जिम्मेदार अफराद जैनसन के करीब आ खड़े हुए। उनमें से एक ने पर्चा भी तलब किया, ये रहा मुलाहिजा फरमाइए। वो उसे देखता रहा फिर बोला, लेकिन आपके साथी ने तो उस वक्त किसी तहरीर का जिक्र नहीं किया था। डरपोक आदमी है, जैनसन का बर्दसस्ता जवाब था। क्या आपको किसी पर शुबा है? हरगिज नहीं, मेरे लिए सब अजनबी है। बहरहाल मेरी दानिश में इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि आप जन्नत अर्जी साहिती की तरफ प्रवास कर रहे हैं। जहाज के जिम्मेदार आदमी ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास के लोग भी सुन सकें। हम पास नहीं है, जैनसन ने शानों को जन्मित दी और बैठ गया। ये अच्छा नहीं हुआ, लुईसा आहिस्ता से बोली। जब तक हम अंधेरे में रहेंगे यही होता रहेगा, जैनसन ने खुश लहजे में कहा। मकसद तय हुए बगैर कोई राह मुतय्यन नहीं की जा सकती। जफर मलिक उसे टटोलने वाली नजरों से देखने लगा। क्या इतना बता देना काफी नहीं कि तुम दोनों प्रिंस के लिए काम कर रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें तुम्हें मिलेंगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यह हुई बात, जैनसन बोल पड़ा, लेकिन इस इंतजाम से हमारी मुश्तरका मोहब्बत खतरे में पड़ गई। हरगिज नहीं, लुईसा सर हिलाकर बोली। हम तीनों जहाज रहेंगे, साथ ही रहेंगे, लेकिन अगर किसी एक के लिए फैसला न कर सकी तो फिर मजबूरन दोनों से मोहब्बत करती रहूंगी। तुम फजूल बातें क्यों शुरू कर देते हो? जफर जैनसन को घूरता हुआ बोला। जब करने को कुछ न हो तो फजूल बातें जिंदगी का सहारा बन जाती हैं। खामोश रहो। वैसे मेरी एक बात भी सुन लीजिए, जैनसन ने उर्दू में कहा। क्या आप अब भी यही समझते हैं कि महज इत्तेफाक है और इमरान साहब ने ताहिजी का चक्कर यूं ही बेमकसद चलाया था?
क्या नंबर एक